Iran Radio Podcast. दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। दुनिया भर की दौलत हड़पने के लिए स्पेन और पुर्तगाल के बीच मुकाबला जारी था। हर कोई अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के शाही परिवारों के बीच रिश्ते जोड़ने का सिलसिला भी चल रहा था। इनमें से हर देश को ये उम्मीद रहती थी कि इस तरह के रिश्तों से उसे फ़ायदा पहुँच सकता है। 1577 में पुर्तगाल के राजा सिबेस्टियन ने स्पेन के राजा फिलिप को यह प्रस्ताव दिया कि एक मामले में आपस में प्रतिस्पर्धा छोड़कर एकजुट हो जाएं और मिलकर मोरक्को पर हमला कर दें। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 5वां एपिसोड है। मैं हूं अहमद अब्बास, आप सबको मेरा सलाम। मोरक्को पर हमले के पुर्तगाली किंग के प्रस्ताव को स्पेनिश किंग फिलिप ने ठुकरा दिया। फिलिप इस हमले के अंजाम से खौफजदा था, लेकिन सिबेस्टियन ने अकेले ही मोरक्को पर हमला कर दिया। उसे बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा और जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ा। फिलिप ने शादी नहीं की थी और उसके कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसकी जगह उसके पिता के चाचा कैरडिन हेनरी को गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन 2 साल बाद हेनरी की भी मौत हो गई और उसका भी कोई वारिस नहीं था। स्पेन के किंग के लिए ये बेहतरीन मौका था कि वो पुर्तगाल पर उसके सभी उपनिवेशों के साथ कब्जा कर ले। इससे पहले जो एक शादी हुई थी उसने ये काम आसान कर दिया। फिलिप सिबेस्टियन की माँ का मामू था और अब वो पुर्तगाल का भी राजा बन गया। अब दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में जितने इलाकों पर भी पुर्तगाल का कब्ज़ा था वो सब स्पेन के कब्ज़े में थे। स्पेन ने पुर्तगाल के सभी उपनिवेशों को हड़प लिया था। स्पेन के राजा फिलिप ने पुर्तगालियों के साथ अच्छा बर्ताव किया और उम्र के आखिरी पड़ाव तक अपने वादों को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद उसके जानशीनों ने पुर्तगालियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। स्पेन के शासकों ने पुर्तगालियों पर इतना जुल्म किया कि 1640 में उन्होंने बगावत कर दी और जॉन ड्यूक बरगंजा को अपना राजा चुन लिया। यूरोप के दूसरे देश जो स्पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे पुर्तगालियों के समर्थन के लिए उठ खड़े हुए। फ्रांसीसियों और डचों ने उनकी मदद के लिए जहाज रवाना कर दिए। ब्रिटेन भी अपने एक सीनियर कमांडर के नेतृत्व में सेना भेजने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। ब्रिटेन की शर्त ये थी कि पुर्तगाल के किंग को अपनी बेटी कैथरीन की शादी ब्रिटिश किंग चार्ल्स से करनी होगी। कैथरीन के जहेज में हिंदुस्तान के बंदरगाही शहर बम्बई की मांग की गई, जो पिछले कई वर्षों से पुर्तगाल के कब्जे में था। इसके अलावा मोरक्को का शिंजा शहर, 5,00,000 पाउंड कैश और अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के सभी उन हिस्सों में ब्रिटेन को व्यापार के लिए सुविधा प्रदान करना जिन पर पुर्तगाल का कब्जा था। पुर्तगाली प्रिंसेस दुल्हन बनकर इस जहेज के साथ ब्रिटेन पहुंच गईं और ब्रितानी फौजी पुर्तगाल के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद 1668 में स्पेन ने पुर्तगाल को आज़ादी प्रदान कर दी। इस तरह एक मुल्क जो एक शादी की वजह से गुलाम बन गया था दूसरी शादी की वजह से आज़ाद हो गया। लेकिन इस तरह से ब्रिटेन के लिए हिंदुस्तान में रास्ता खुल गया और अब वो दूसरे यूरोपीय देशों के मुकाबले में बेहतर स्थिति में था। ब्रिटेन के राजा ने बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया, जिसकी स्थापना क्वीन एलिजाबेथ के ज़माने में हुई थी। लेकिन हकीकत यह थी कि ब्रिटिश देर से जागे थे, जब तक दूसरों ने काफ़ी मैदान मार लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से करीब 50 साल पहले से हिंदुस्तान से अवगत थे, लेकिन उस समय ब्रिटिश व्यापारियों को कोई ख़ास कामयाबी हाथ नहीं लगी थी और वो निराश होकर अपने मुल्क वापस लौट गए थे। ये वो ज़माना था कि जब क्वीन ने फ्रांसिस डेरेक के ज़रिए स्पेनिशों से काफ़ी सोना लूट लिया था और वो उसे निवेश करने के लिए जगह तलाश रही थी। उसी के बाद ब्रिटिश व्यापारियों ने क्वीन से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की मांग की थी। कंपनी ने अपनी गतिविधियां शुरू कर दी और क्वीन ने अपना एक नुमाइंदा हिंदुस्तान के राजा के दरबार में भेजा ताकि वो वहां ब्रिटिश हितों की रक्षा कर सके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के दो शहरों सूरत और गोवा में अपने दफ्तर खोल दिए। सूरत एक ऐसा शहर था जो हज पर जाने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों के रास्ते में पड़ता था, इसीलिए वहाँ काफ़ी गहमा गहमी और रौनक रहती थी। गोवा भारत के दक्षिण पश्चिम में बंदरगाही शहर था जो मसालों की तजारत के लिए मशहूर था। ब्रितानियों को सूरत में पुर्तगालियों से और गोवा में डचों से मुकाबला करना था, जिसका अब उन्हें काफ़ी अनुभव हो चुका था। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी गतिविधियां सिर्फ सूरत और गोवा तक ही सीमित नहीं रखी, बल्कि कुछ साल बाद बंगाल की खाड़ी और मद्रास तक अपनी गतिविधियों का विस्तार कर दिया। हालांकि वहां उनसे ज़्यादा ताकतवर यूरोपीय देश फ्रांस नज़रें गाड़े बैठा था। ब्रिटेन के बाद फ्रांसीसी भी कमर्शियल कंपनियों की स्थापना की योजना बनाने लगे ताकि अपने उपनिवेशों में व्यापार करें। लोग इन कंपनियों के शेयर खरीद सकते थे और समुद्र पार व्यापार में जो भी फायदा होता था उसमें भागीदार बन सकते थे। शुरुआत में फ्रांसीसियों ने अमेरिका में वेस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी खोली, उसके बाद हिंदुस्तान में भी एक कंपनी खोली और ब्रितानियों की तरह उसका नाम भी ईस्ट कंपनी रख दिया। अब पेरिस में वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया के शेयर बेचे जाते थे। लुइसियाना की सोने की और भारत की हीरे की खदानों का ऐड इतना ज़्यादा किया गया, न सिर्फ फ्रांस के कोने कोने से बल्कि जर्मनी और नीदरलैंड जैसे अन्य देशों से भी लोग शेयर खरीदने के लिए पेरिस पहुंचने लगे। वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनियों के शेयर खरीदने वाले लोगों का पेरिस में तांता लग गया। पेरिस में घोड़ा गाड़ियों को 7 से 8 हफ्ते पहले ही बुक किया जाने लगा। कंपनियों के शेयरों में तेज़ी से उछाल आ रहा था और कुछ ही हफ्तों बाद शेयर की कीमतों में कई गुना इजाफा हो जाता था। उपनिवेशों के शहरों का बुखार लोगों पर इतना ज्यादा चढ़ गया था कि हर कोई, यहां तक कि छोटे दुकानदार और रेड़ी वाले भी उन्हें खरीदना चाहते थे और लोग बहुत ही कम मुद्दत में पैसे वाले बन जाते थे। फ्रांसीसी सरकार का मानना था कि इससे हासिल होने वाली दौलत में अहम भूमिका उपनिवेशों में सक्रिय फ्रांसीसी प्रतिनिधियों, खासतौर पर हिंदुस्तान में उसके गवर्नर जनरल जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स की भूमिका है। वो हिंदुस्तान में फ्रांस की सैन्य और व्यापारिक गतिविधियों का प्रबंधन करता था। डुप्लेक्स ने हिंदुस्तान के शहर पौंडुचेरी में एक शक्तिशाली सेना का गठन कर लिया था जो इससे पहले तक एक अलग थलग इलाका माना जाता था। अब वो देश में व्यापार का एक केंद्र बन गया था। हालांकि अब डुप्लेक्स की चिंता भी बढ़ रही थी क्योंकि ब्रितानी दिन ब दिन हिंदुस्तान में आगे बढ़ रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक केंद्रों की हिफाजत के लिए किलों का निर्माण किया और मद्रास में एक पोर्ट बनाया। डुप्लेक्स की नज़र इसी पोर्ट पर थी और वो चाहता था कि अंग्रेज़ों की गतिविधियों पर किसी तरह से लगाम लगा दे, इसीलिए उसने मद्रास पर कब्जा करने का मन बनाया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर यहीं तोड़ दे। मद्रास पर हमले के लिए उसने अपने देश से सैन्य मदद भेजने के लिए कहा। कुछ ही दिन बाद बोर्दुनेस की कमान में फ्रांस के कई सैन्य जहाज पौंडुचेरी पहुँच गए। उनके वहां पहुंचते ही डुप्लेक्स ने अपनी सेना को मद्रास की ओर बढ़ने का आदेश दिया। किले की घेराबंदी कर ली गई और कुछ दिन बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के सामने हथियार डाल दिए। مدراس کی فتح کی خبر جیسے ہی فرانس پہنچی، پیرس میں شیئر مارکیٹ میں بڑا اچھال آیا اور کئی فرانسیسی راتوں رات امیر بن گئے۔ ڈوپلیکس اس جیت کے نشے میں مست تھا اور وہ سوچنے لگا کہ اس جیت نے اسے دنیا بھر میں مشہور کر دیا ہے۔ لیکن ایڈمیرل بوردونیس انگریزوں کے ساتھ سانٹھ گانٹھ میں لگ گیا۔ اس نے انگریزوں سے بھاری رشوت لے لی اور ان کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کر دیے۔ اس سمجھوتے کے مطابق اس رشوت کے بدلے انگریز مدراس میں اپنا ویاپارک کیندر اور قلعہ واپس لے سکتے تھے۔ بوردونیس نے انگریزوں سے پیسے لے لیے تھے، لیکن ڈوپلیکس ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے انگریز قیدیوں کو آزاد کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کی شرط تھی کہ انگریز قیدیوں کی رہائی کے لیے انہیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ کبھی بھی فرانس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ ایڈمیرل بوردونیس کو فرانس لے جایا گیا اور غداری کے جرم میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ شیر کی کھال اوڑھنے والے بھیڑیے کو پتا چل گیا کہ اس کی چال ناکام ہو گئی، اس لیے وہ چھپ کر بیٹھ گیا اور صحیح موقع کا انتظار کرنے لگا۔ انگریزوں نے پڈوچیری میں بھی ایک قلعہ بنا لیا تھا، لیکن فرانسیسیوں کی اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ اس قلعے کا نام سینٹ ڈیوڈ تھا۔ فرانسیسیوں نے سینٹ ڈیوڈ قلعے کی اور جانے والے راستوں کی نگرانی شروع کر دی، لیکن ان کا کبھی اس شخص پر شک نہیں گیا جس کی سکن کا کلر دکشن بھارتیوں کی طرح تھا اور وہ استھانیہ لوگوں کی طرح کپڑے پہنتا تھا۔ یہ شخص انگریزوں کا جاسوس تھا جس کا نام رابرٹ کلائیو تھا۔ اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے سینکوں کا منوبل بحال کرنے اور مدراس کو فرانسیسیوں سے چھیننے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس نے اپنی سکن کا کلر ستھانی لوگوں کی طرح کر لیا تھا۔ کلائیو سینٹ ڈیوڈ تک پہنچ گیا اور بندراگ پر برطانی بیڑے کے پہنچنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب 8,000 سینکوں کے ساتھ 30 برطانی جہازوں کا بیڑا ہندوستان پہنچا تو انہوں نے مدراس پر سیدھا حملہ کرنے کے بجائے پڈوچیری کا گھیراؤ کر لیا، جو فرانسیسیوں کا اصلی ویاپارک کیندر تھا۔ کچھ دن بعد ہی کلائیو کی چال کامیاب ہو گئی اور فرانسیسیوں نے پڈوچیری کی گھیرا بندی ختم کرنے کے بدلے میں مدراس سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب وہ بھیڑیا کہ جسے لوگ شیر سمجھ رہے تھے ہار چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس کا لالچ ختم نہیں ہوا تھا۔ ڈیکن یا دکشن ہندوستان کے دکشن میں ایک بڑا علاقہ تھا جہاں کی آبادی اس وقت 40 ملین تھی۔ یہ علاقہ آپسی جھگڑوں کی وجہ سے جل رہا تھا۔ ڈوپلیکس نے موقع غنیمت دیکھ کر ایک گٹ کے ساتھ گٹھ بندھن کر لیا اور اپنے سینکوں اور توپ خانے کو اس کے حوالے کر دیا۔ گٹھ بندھن نے یہ لڑائی جیت لی اور ڈیکن کے شاسن پر قبضہ کر لیا، لیکن اس گٹ کو شاسن جاری رکھنے کے لیے بھی ڈوپلیکس کی مدد کی ضرورت تھی۔ اب ڈیکن میں فرانس کی کٹھ پتلی سرکار تھی۔ فرانسیسیوں نے کرناٹکا کی لڑائی میں دخل دیا اور استھانیہ شاسک کو اپنے ادھین کر لیا۔ اب فرانس کی کمپنی ایسٹ انڈیا کا ہندوستان میں فرانس کے دگنا علاقے پر قبضہ تھا اور یہاں کی آبادی بھی فرانس سے کئی گنا زیادہ تھی۔ ٹائیگروں اور طوطوں کی سرزمین پر انگریزوں اور فرانسیسیوں کے بیچ پرتسپردھا جاری تھی۔ برٹین نے بہت ہی کم وقت میں فرانس کے قبضے والے ایک اہم علاقے کو چھین لیا تھا۔ اس سے فرانسیسی اور ان کے اہنکاری گورنر جنرل بہت غصے میں تھے۔ جوسف فرانسوا ڈوپلیکس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے والے ایک علاقے پر حملہ کر دیا، لیکن اسے بھاری ہار کا سامنا کرنا پڑا اور لڑائی کو جاری رکھنے کے لیے اس نے پیرس سے پیسہ اور نفری بھیجنے کی مانگ کی۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑائی میں ڈوپلیکس جو پیسہ خرچ کر رہا تھا، اس سے فرانس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے شیئر ہولڈر بہت ناراض تھے۔ کمپنی کے مینیجرز ڈوپلیکس کو سندیش بھیج رہے تھے کہ ہمیں کچھ ویاپاری کیندر اور بندرگاہیں چاہیے، نہ کہ ایک وشال دیش۔ حالانکہ دوسری طرف برطانی دربار پیسہ، فوجی اور ہتھیار بھیجنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فرانس کو لگاتار یہ میسج بھیج رہا تھا کہ ہندوستان میں ڈوپلیکس کی حرکتوں سے دونوں دیشوں کے بیچ جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اس وجہ سے فرانسیسی سرکار نے ڈوپلیکس کو اس کے پد سے برخاست کر دیا اور پیرس طلب کر لیا۔ پیرس میں ڈوپلیکس نے فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھاری رقم طلب کی جو اس کی کمپنی پر ادھار تھی، لیکن اتنی بڑی رقم اتنی آسانی سے تو حاصل ہونے والی نہیں تھی۔ ڈوپلیکس 10 साल तक कंपनी के अधिकारियों के पीछे दौड़ता रहा और पेरिस में खाक छानता रहा, लेकिन एक ढेला भी उसके हाथ नहीं लगा और आखिरकार वो गरीबी में ही इस दुनिया से चल बसा।